ऐसा माना जाता है कि साहित्यकार समाज का पथ प्रदर्शक होता है। गूढ़ विषयों को सरल मानदंड लेकर आम आदमी के सामने प्रस्तुत करना साहित्यकार के कर्तव्य में आता है। जितना उचित मंथन उतनी ही सही दिशा समाज के लिए तय हो जाती है और जितना सटीक चिंतन समाज की उतनी ही संतुलित मानसिकता स्थापित होती है।
परंतु साहित्यकार के लिए यह बंधन होता है कि वह जिस देश काल जिस विधा जिस भाषा में लिखता है साधारणतया उसकी पहुंच वहीं तक सीमित हो जाती है। और अगर कोई अनेक भाषा में लिखे तो जरा सोचिए उसके चिंतन मनन और मंथन का कितना वृहद क्षतिज होगा। एक साथ कितनी विचारधाराओं को चिंतन से संलग्न कर पाएगा। आखिर टकराव विभिन्न विचारधाराओं को ही तो है। और अगर साहित्यकार विभिन्न विचारधाराओं को एक मंच पर लेकर आ सके तो वह एक उपलब्धि से कम नहीं। आखिर यह गुण किसी भी लेखक में यूं ही नहीं पाया जाता।
और ऐसे ही गुण से ओतप्रोत लेखिका हैं आदरणीय स्वर्ण ज्योति जी। आप वो रचनाकार हैं जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं, फिर भी आपने हिंदी लेखन में उच्च कोटि का साहित्य रचा है। लेखन हिंदी में किया परंतु अनुवाद अनेक भाषाओं में किए हैं। चिंतन एक परंपरा का, मंथन दूसरी संस्कृति का और मनन पूरे हिंदुस्तान के समाज के लिए। आपने भाषाओं की परिधि को तोड़ा है, उनकी सीमाओं को समाप्त किया है। अक्सर ये विवाद का विषय रहा है कि कौन सी भाषा का साहित्य श्रेष्ठ है। आपने इस सत्य को स्थापित किया है कि श्रेष्ठता नाम से नहीं होती, विचारधारा से होती है। आपने इस बात को भी स्थापित किया है कि हर परंपरा की विचारधारा अपने आप में उच्च कोटि की होती है। आवश्यकता इस बात की होती है कि उच्च कोटि के विचारों को आपस में किस तरह एक साथ लाया जाए।
यूं तो एक धारा दूसरी धारा से मिल नहीं पाती। विभिन्न विचारधाराओं की धारा भी इसी तरह है। लोग हिंदी की सार्थकता पर सवाल उठाते रहे हैं, क्षेत्रीय भाषाओं से इसके टकराव पर प्रश्न चिन्ह लगाते रहे हैं, पर आपने इस टकराव को निर्मूल कर दिया है। आपका मानना है कि हिंदी इन विचारधाराओं को जोड़ने वाला एक सेतु है। आप हिंदी के माध्यम से अनेक विचारधाराओं से अनेक भाषा के साहित्य से जुड़ सकते हैं, या यूं कहिए कि आप सागर की दृष्टि से विभिन्न धाराओं की सार्थकता को पहचान करते हैं। आखिर सागर का अस्तित्व भी इन धाराओं से ही तो है, और भारतीयता का अस्तित्व विभिन्न भाषा के साहित्य से, और इन भाषाओं की कड़ी है हिंदी।
ये विचारणीय है कि किस तरह सारे भाषा आधारित भेदभाव अपने आप समाप्त हो सकते हैं। आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से इन विदुषी का सम्मान कर रहे हैं। आपने अनुवाद एवं बहुभाषी लेखन के माध्यम से विभिन्न विचारधाराओं को जोड़ा है। उन्होंने हिंदी लेखन के माध्यम से विभिन्न विचारधाराओं को एक मंच पर लाने का सफल प्रयास किया है।
मुझे नहीं पता कि श्री भूवलय के बारे में कितने लोगों को पता है। श्री भूवलय एक ऐसा प्राचीन ग्रंथ है जो अंकों की भाषा में लिखा गया है। अंकों की भाषा में ग्रंथ? जी हाँ, अंकों की भाषा में। है ना आश्चर्य की बात, यह ग्रंथ विश्व का एकमात्र अंक काव्य है। अब सोचिए अंकों की भाषा में ग्रंथ ही अगर आश्चर्य है तो इसका अनुवाद कितना विस्मयकारी होगा, वह तो शायद एक अजूबा ही लगे। और यह अजूबा किया है आदरणीय स्वर्ण ज्योति जी ने। जी हाँ, अंक काव्य अंकों की भाषा में लिखा ग्रंथ और इसके अनुवाद का कीर्तिमान आदरणीय स्वर्ण ज्योति जी के नाम ही दर्ज है। आपने पुरातन साहित्य को आधुनिक साहित्य से इतनी सरलता से जोड़ा है कि इसकी विकटता का अंदाज लगाना आम आदमी ही नहीं अपितु गुणी जनों की परिधि में भी नहीं आता। ऐसे ग्रंथ पढ़ने के अवसर मिलते नहीं, ढूंढे जाते हैं। ढूंढिए इस ग्रंथ को और जानिए आदरणीय स्वर्ण ज्योति जी की विलक्षण गहराई को। जरा इस महान ग्रंथ का उल्लेख उनसे ही सुनिए।
मेरी बड़ी इच्छा थी कि ये ग्रंथ बहुत लोगों के पास इसकी जानकारी पहुंचे, क्योंकि एक ऐसा ग्रंथ है कि आज हम कंप्यूटर कोडिंग की बात करते हैं और बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि कंप्यूटर में कोडिंग की जा सकती है
जी,
परंतु ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसको 8वीं शताब्दी में कुमुदेंदु मुनि जी ने ही कोडिंग में ही लिख दिया है
जी।
तो हमारे लिए कोडिंग नई चीज नहीं है, इस ग्रंथ यह ग्रंथ यह भी साबित करता है।
इसका मतलब मैम, हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, वेद पुराण और इस तरह के जितने भी ग्रंथ देखा जाए तो हम लोग उस समय इतना आगे बढ़े हुए थे, आज के समय से भी आगे थे शायद,
बहुत आगे। इस ग्रंथ का ये एक मैं तो बहुत पहले तक इसके विषय में नहीं जानती थी। मैं इसकी कहानी आपको आगे आगे बताऊंगी, अभी आपके प्रश्न का जवाब दे देती हूँ। कि सिरी भू वलय का मतलब होता है, सिरी का मतलब होता है, ये संस्कृत शब्द है, कन्नड़ में बहुत यूज किया जाता है, सिरी का मतलब होता है संपत्ति
जी।
और भू वलय, भू का मतलब तो भूमंडल, हमारा ब्रह्मांड है, वलय भी ब्रह्मांड, तो ये ब्रह्मांड की संपत्ति है।
स्वर्ण ज्योति जी पहचान है भारतीय साहित्य की, न कि मात्र भाषाओं के साहित्य की। अगर आप स्वर्ण ज्योति जी को पढ़ते हैं तो आप भारतीय साहित्य को पढ़ते हैं, जो भाषाओं की सीमाओं को तोड़कर कहीं ऊंचे स्तर पर स्थापित हो चुका है। आप लेखक के लेखन को एक खुली किताब की तरह मानती हैं।
उनकी कविता की पंक्तियों के सार में मैं इतना कहना चाहूंगा कि जब एक लेखक एक रचना बनाता है तो उसके अनेक अर्थ होते हैं। एक शब्दार्थ जिसे रचना से साक्षात्कार होता है, भाव की दृष्टि से उसके मन को और उसके अर्थ के माध्यम से उसके मस्तिष्क को। स्वर्ण ज्योति जी के शब्दों में जब हम कविता को पढ़ते हैं तो हम एक विचार को भी पढ़ते हैं और हम एक संस्कार को भी पढ़ते हैं। सुनिए उनसे ही उनके भावों को।
खुली किताब, एक खुली किताब हूँ मैं, एक खुली किताब हूँ मैं, जिधर से भी पढ़ो समझ में आ जाऊंगी। शर्त ये है मगर, शर्त ये है मगर, तुम्हें पढ़ना आना चाहिए। स्पर्श स्पंदन से परे, स्पर्श स्पंदन से परे, गहरी सुवास हूँ मैं, एक खुली किताब हूं मैं। चेहरे को देखोगे तो खो जाओगे, चेहरे को देखोगे तो खो जाओगे, शब्दों को ढूंढोगे तो पछताओगे, भावों को बूझोगे तो उलझ जाओगे। ना आंखों देखी ना कानों सुनी, ना आंखों देखी ना कानों सुनी, ऐसी बात हूं मैं, एक खुली किताब हूं मैं। लफ्ज लफ्ज में गहरे अर्थ छिपाए हुए हूं मैं, लफ्ज लफ्ज में गहरे अर्थ छिपाए हुए हूं मैं, सफे सफे में जिंदगी बसाए हुए हूँ मैं, हर एक एहसास हूँ मैं, हर एक एहसास हूँ मैं, जीने की आस हूँ मैं, समझो तो पास हूँ मैं, समझो तो पास हूँ मैं, वरना इकराज हूँ मैं, फिर भी एक खुली किताब हूँ मैं, जिधर से भी पढ़ो समझ में आ जाऊंगी, शर्त ये है मगर, शर्त ये है मगर, तुम्हें पढ़ना आना चाहिए, एक खुली किताब हूँ मैं।
सामाजिक आचार इससे ही स्थापित होता है। किसी भी रचना के शब्द अनायास ही नहीं बन पड़ते हैं। जो शब्द बिखर जाते हैं उनका कोई अर्थ या विषय नहीं होता, परंतु जो रचना मंथन करके लिखी जाती है वो अपने आप में एक परंपरा बन जाती है। जब एक भाषा के साहित्य को लेखक के मंथन को पढ़ते हैं तब आप संस्कारों को पढ़ते हैं, न कि सिर्फ शब्दों को। स्वर्ण ज्योति जी के साहित्य में आप स्पष्ट देख सकते हैं कि जब आप उस रचनाकार को पढ़ते हैं तब आप एक मस्तिष्क को भी पढ़ पाते हैं, और इससे आपको उसी तरह का मार्गदर्शन मिलता है।
अगर आप एक साहित्य को समझते हैं तब कितने गुणों को आप एक साथ समझते हैं। आपके लेखन ने साहित्य को बहुआयाम दिए हैं। इस विचार को लेकर चले तो स्वर्ण ज्योति जी के शब्दों की सार्थकता समझ आती है। अगर ये विचार हर व्यक्ति समझ जाए कि हिंदी एक सेतु के माध्यम से अनेक भाषाओं को जोड़ती है तो कितना विशाल सागर निर्मित होगा, इसकी कल्पना कीजिए। फिर देखिए हमारे भारतवर्ष का साहित्य किस तरह लहरों की तरंगों पर उछल कर उमड़ पड़ेगा।
जब हम स्वर्ण ज्योति जी को पढ़ते हैं तब साहित्य को पढ़ने की विधा भी सीखते हैं। साहित्य लिखना तो एक विधा है, लेकिन साहित्य सही से पढ़ना भी एक विधा है। कभी सोचा इस तरह से?